بسم الله الرحمن الرحيم ہم آج انشاءاللہ جس موضوع پر اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے وہ ہمارا وہی ٹاپک ہے معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں معارف اور انفارچونیٹلی آج ہم پھر لاک ڈاؤن میں ٹریپ ہو گئے تو جس کی وجہ سے جو ہماری شیڈیولڈ گیدرنگ تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے اور تھوڑا سا یعنی کہ میرے لیے ایک انیزی ایکسپیرینس اگین کہ بالکل خالی خالی بیٹھ کے بات کرنا, لیکن انشاءاللہ خدا کی مدد اور توفیق کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ موضوع کو پھر اچھے طریقے سے انشاءاللہ آگے لے جا سکیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس طریقے سے یعنی ائمہ علیہ السلام کی خاص طور سے دعاؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس میں میں نے بہت ہی سمپل ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے بات کرنا شروع کی کہ یعنی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہو, لوگوں کو کس نظر سے دیکھا جائے, اور پھر اس میں یہ کہ ہم جب اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں اپنا جسے کہتے ہیں مینٹل سیٹ اپ اور ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ لیونگ کا کیسے بلڈ کیا جائے, کیونکہ ان تمام موضوعات پر آنا کہ جو بہت اعلیٰ اور بلند معارف اور آخرت اور توحید اور اس کی گہرائیوں سے وابستہ اور متعلق ہیں, اور ایسے موضوعات بھی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں کم نہیں ہیں, آپ کی دعاؤں میں, آپ کے کلمات میں. لیکن جو یعنی کہ جو میرے ذہن میں جو ترتیب بن رہی تھی وہ یہی تھی کہ ان پر ہم بعد میں آئیں, آخر میں آئیں, اور کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر سوالات اور زیادہ تر چیزیں یہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری زندگی میں جو پرائمری انٹرسٹ ہے, اگرچہ کہ ہم مختلف مطلب الہی اور علمی موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو مین انٹرسٹ ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ ہمارے دنیاوی معاملات پر ہوتا ہے, ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئرز اور ڈیلنگز کے حوالے سے ہماری دلچسپیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو ذرا پہلے ہم یہی ہم نے کہا چاہا کہ پہلے ذرا ان کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے. تو لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے رزق پہ, اور رزق کے حوالے سے میں نے دو تین دعائیں معصومین علیہ السلام کی, امام سجاد علیہ السلام کی, امام صادق علیہ السلام کی بھی آپ کے سامنے رکھی, اور اس میں پچھلی دفعہ جو ہم نے خاص طور سے دعا جس کا ذکر کیا تھا تھوڑی تفسیر کے ساتھ, اور اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یعنی کلمات معصومین کے اندر خود اتنا حسن ہے اور اتنی جسے کہتے ہیں حسن ترتیب بھی ہے, حسن بیان بھی ہے, کہ اس پر کوئی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا میننگ کو ایلیبوریٹ کر دینا کافی ہے. تو میں بھی انشاءاللہ اسی بات کی ہی ایفرٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا, اور ایسی ہماری کوئی نیت نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ تفسیری اس بارے میں گفتگو کریں, تھوڑا تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں. اور زیادہ جو پرابلم ہے ہمارے ساتھ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ توجہ نہیں ہوتی, یعنی جو کچھ بھی ہمارے سامنے معارف کے خزانے موجود ہوتے ہیں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اصل کام ہے توجہ دلانا اور تھوڑے تھوڑے سے جو کنفیوژنز ہیں ان کو کلیریفائی کرنا. تو رزق کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو دعا نمبر 29 تھی سیف سجادیہ کی, اور اس میں امام علیہ السلام نے باقاعدہ رزق کی خدا کے بارگاہ میں جو التجا تھی اس کو اس آیت قرآن کریم پر لا کر کلمنیٹ کیا تھا, ختم کیا تھا کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور یہ ایک اتنا اہم کنسپٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ایک نظریہ ہے کہ جو ہمارے دماغوں میں راسخ رہنا چاہیے, کہ اگر ہم اس بات کو بلیو نہیں کر پا رہے ہیں तो आप समझ लीजिए कि फिर इंसान जो है ना वो एक किस्म की फकीरी और मोहताजी की दलदल में धंसता चला जाता है। और फकीरी और मोहताजी हकीकतन, यानी यहां भी हम अभी मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं से ही ये बात हमको और अच्छे से समझ में आती है, और ये बड़ा रिकरिंग कंसेप्ट है कि फकीरी और मोहताजी माल के ना होने का नाम नहीं है। फकीरी और मोहताजी जो है वो अपने जैसे इंसानों के सामने अपने आप को दस्त निगर देखने का नाम है। यानी इंसान के अंदर अगर ये कैफियत पैदा हो जाए कि लोगों से मेरे मसाइल हल होंगे, माल के जरिए से मेरी मुश्किलात सॉल्व होंगी, ये कल्ब में, दिल में, दिमाग में इन नजरियात का कायम होना असल फकीरी और मोहताजी है। और इसी बात का, यानी कि ये एक बड़ी अहम तरीन मारिफत है कि जो हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं से हासिल होती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज मैं दो दुआओं में से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो दुआ नंबर 30 है कि जो इन 29 के बाद 30 सहीफ़ा सज्जादिया में, कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने कर्ज के हवाले से फिल मऊनत अला कवा दैन, दैन दीन नहीं, दैन दाल पर जबर, दैन का मतलब होता है कर्ज, डेप्ट, और दीन तो आपको पता है, बल्कि दीन का एक मायना जो है वो जजमेंट का भी होता है जो मालिक यौमिद्दीन में आता है। तो दुआ का टाइटल क्या है? इसका नंबर है सहीफ़ा सज्जादिया में नंबर 30, 30, और इसका टाइटल है दुआहू फिल मऊनत अला कवा दैन, यानी कर्जे को अदा करने के सिलसिले में या कर्जे को खत्म करने के सिलसिले में खुदा से मदद तलब करना। ठीक है, ये दुआ का टाइटल है। अच्छा, कर्जे के हवाले से जो बात है, यानी डेप्ट के उसूलन, और ये बात बड़ी वजाहत के साथ हमारे सामने आ रही है कि किसी भी इंसान के सामने मकरूज होना या कर्जदार होना ये इंसान के लिए बिल्कुल भी कोई मेरिट की बात नहीं है, ये कोई काबिले तारीफ बात नहीं है। और अगर हम अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी एक आजमाइश का नाम है और इस आजमाइश में इंसान के तमाम मामलात ऊपर नीचे होते हैं, यानी आजमाइश का तरीका यही है, इसी को बला कहते हैं। कि बला का मतलब यही होता है कि खुदा हमें एक हालत में स्टेबल छोड़ता नहीं है दुनिया में, यानी ऐसा नहीं होता है कि हमारी जिंदगी का ग्राफ बिल्कुल एक लेवल पर चलता चला जाए, बल्कि मुख्तलिफ जहतों से हमारी जिंदगी के हालात और वाकयात जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं उनके मामलात। तो इसी तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज एंड मींस ऑफ लाइफ हैं, जो हमारे समझ लें कि रिज्क और रोजी के मामलात हैं, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी रिज्क में इंसान अपने तंगी महसूस करे, तो ये नहीं कि रिज्क को कमाने के लिए या उसको हासिल करने की एफर्ट छोड़ दे, लेकिन अक्सर औकात इम्तिहान इलाही में ये भी होता है कि बंदे की कोशिशें कारगर नहीं होती, ये भी खुदा का इम्तिहान होता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत ये होती है कि खुदा हमको ये समझाना चाहता है कि देखो, रिज्क के जो मामलात है ना, और रिज्क का या जिंदगी के वसाइल का आना जाना, ये हकीकतन तुम्हारे हाथ में नहीं है। यानी जिस तरीके से कि सूरह यासीन की आयत है कि वमन नुअम्मिर हो नुनक्किस फिल खल्क अफला याकिलून, कि जिसको हम उम्र में, एज में ज्यादा करते हैं, उसको बनावट में झुका देते हैं। यानी क्या होता है, इंसान जितना इंसान एजेड होता है, बूढ़ा होता है, तो उसकी खिलकत झुक जाती है, कमर झुक जाती है, पीठ झुक जाती है, ताकत कम हो जाती है। और अफला याकिलून का मतलब यह है कि अकल इस्तेमाल करो कि देखो तुम्हारी अपनी फिजिक और फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारे अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर तुम खुद इसके मालिक होते तो कभी जवानी की ताकत के बाद बुढ़ापे की कमजोरी को कबूल नहीं करते या अपने लिए नहीं लाते। तो इसी तरीके से जिंदगी के जब ये उमूर होते हैं कि इंसान को बहुत थोड़ी सी कोशिश के साथ बहुत ज्यादा मिल जाता है और बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद बहुत थोड़ा सा नसीब होता है, तो ये सबूत है यानी खुदा की तरफ से ये एक तरबियत और टीचिंग है कि देखो ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है, इनके मालिक तुम नहीं हो। और इसी बिना पर रिज के लिए, रोजी के लिए, इन तमाम मामलात के लिए तुम हमेशा अपने रब की बारगाह में उम्मीदवार रहो। तो जब इंसान इस बात को ऑब्जर्व करे कि मैं कोशिश भी कर रहा हूं, एफर्ट भी कर रहा हूं लेकिन नहीं मिल पा रहा, तो समझ ले कि ये खुदा का एक इम्तिहान है और उस इम्तिहान के अंदर जो खुदा हमसे एक्सपेक्ट करता है एक बंदे मोमिन से, वो दो बातें खास तौर से एक्सपेक्ट करता है, इन्हें सब्र शुक्र तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा हमारे बिहेवियर्स में दो चीजें एक्सपेक्ट करता है, एक कनाअत और एक खुददारी। कि हम अपने जिंदगी के मामलात को ज्यादा से ज्यादा समेटने की कोशिश करें, अपनी जरूरियात को ज्यादा से ज्यादा लिमिट करने की कोशिश करें, अपनी चादर समेटें और चादर के मुताबिक हाथ पैर फैलाएं। और खुददारी, यानी खुददारी का मतलब क्या हुआ कि इंसान अपनी इज्जत नफ्स को हत्तल इम्कान किसी और के सामने ना रखे। और यहां पर आखिरी जो बात आती है कि जिसको दीन ने बहरहाल एक लिहाज से अप्रूव किया है, वो ये कि अगर तुम बिल्कुल मजबूर हो जाओ तो अहले ईमान के सामने अपनी हाजत बयान करो और रखो। और उसकी वजह क्या है कि अहले ईमान के दरमियान खुद दीन की वजह से, दीन के बिना पर रिश्ता उखवत है, इन नमल मोमिनूना इखवतुन के रिश्तेदारी है उनमें आपस में। और रसूल खुदा ने फरमाया है कि जैसे मोमिनीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए ऐसे हैं कि जैसे एक दीवार में चुनी हुई ईंटें होती हैं कि एक ईंट दूसरे को सहारा देती है। तो अगर इंसान यानी ये कि हत्तल इम्कान अपने आप को कनात में रखना है, खुददारी में रखना है, अपनी इज्जत नफ्स को हत्तल इम्कान महफूज रखना है, और अगर बिल्कुल ही अब आपको पता चले कि भाई अब बन नहीं पड़ती, अब मैं मतलब मेरे बस से बाहर हो रही है चीज, अब मैं नहीं संभाल सकता, तो फिर किससे जाके आप बात कर सकते हैं, किसके सामने अपनी जरूरत को बयान कर सकते हैं? अपने बरादरे मोमिन के आगे। और जो बरादरे मोमिन है उसके ऊपर लाजिम और वाजिब है कि अपने मोमिन भाई की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करे कि उसको जर्रा बराबर अपनी इज्जत नफ्स के खराब होने का एहसास ना होने पाए। ये उस पर फर्ज है, उस बरादर मोमिन पर। यानी जैसे एक बात कही जाती है ना कि जब भी कोई किसी के सामने जाके अपनी हाजत को बयान करता है तो मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। लेकिन खुदा ने जिस तरीके से बात की है सूरह अल फजर में कि बलकल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहावून अला ताअमिल मिस्कीन, कि तुम यतीम की करामत नहीं करते, तकरीम नहीं करते और मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को तरगीब नहीं दिलाते, एक दूसरे को इनकरेज नहीं करते कि यतीम को, कि मिस्कीन को जाके उसको खाना खिलाओ, उसकी मदद करो। तो यानी ये जिस मोमिन से हाजत तलब की गई है उस का फर्ज यह है कि देने वाले को यह एहसास, जिसको दिया जा रहा है उसको यह एहसास ना होने पाए कि तुम्हारा हाथ नहीं चाहे दुरुस्त। और यह मैं आप लोगों को वाकयात भी इस किस्म के सुना चुका हूं, आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के اور خاص طور سے جو امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ایک سائل نے آ کے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے پردے کے پیچھے سے اس کو آواز دی, وہ جب قریب آیا ہاتھ آگے بڑھایا, تھیلی درہم و دینار کی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا تم چلے جاؤ یہاں سے. اور اس رویے پر جب آپ کے اصحاب حیران ہوئے, تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لائے, اصحاب حیران ہوئے کہ یہ مطلب آپ ہم سمجھ میں نہیں آیا آپ کا طریقہ, تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شریف النفس انسان کسی کے پاس جا کر اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے تو اس کے لیے خجالت اور شرمندگی کا موقع ہوتا ہے. تو میں نے اس بات کو نہیں پسند کیا کہ میرے چہرے پر لینے والے کی نظر پڑے اور مجھے دیکھ کر وہ شرمندگی اور رسوائی محسوس کرے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اوورال جو اسلام کی دین کی تعلیمات ہیں کہ یہ اسپیکٹ جو ہمارے جہاں پر ہمارے رزق اور روزی اور ان تمام چیزوں میں جب یہ معاملات آ جاتے ہیں کہ کبھی تنگی ہو جاتی ہے کبھی پریشانی ہو جاتی ہے, تو اس میں جو جس کے اوپر یہ پریشانی اور آزمائش آ رہی ہے اس کے بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ارد گرد جو مومنین موجود ہیں کہ جو ان سے رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے بھی اپنے کام ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں پھر یہ دعا دیکھیں, آج ہم اس دعا تک رہتے ہیں یا اگلی دعا جو پھر ایک اور دعا نمبر 13 ہے 13, اس کے بعد وہ ہم اس پہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ دعا ہے برائے طلب حاجات, کہ اپنی حاجتوں کے طلب کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام کس طریقے سے دعا فرماتے تھے, تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ثابت ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جیسا میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ باتیں یہی ہیں ہماری زندگی میں, کہ رزق کے مسائل حل ہو جائیں, قرضے ادا ہو جائیں, ہماری جتنی بھی مطلب ظاہری دنیاوی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو ہم ذرا اس بات کو دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام نے ان معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کیا ہے اور ان کے بارے میں کس طریقے سے اپنے خیالات اور نظریات کو بیان فرمایا ہے دعاؤں کے پیرائے میں. تو دعا نمبر 30 ہے قرض کی ادائیگی. اللہم صل علی محمد و آلہ وحب لی العافیت من دین. پہلا جملہ کیا ہے, بعد از درود و سلام علی محمد و آلہ وحب لی, وحب یعنی بخش دے عطا کر دے, اور یہ جملہ امام علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت مرتبہ آیا ہے. یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی زندگی کے مسائل اور معاملات میں نجات کے مواقع یا نجات کی راہیں یا زندگی کے مشکلات کا حل ہونا, یہ تمام کی تمام چیزیں خدا سے مانگی گئی ہیں بطور ہبہ یعنی بخشش یعنی عطا. اور بطور بخشش اور عطا مانگنے کا مطلب یہ ہے پہلی ہی منزل پر کہ میں اپنے آپ کو اپنے عمل یا ایمان یا کسی بھی میرٹ کی بنا پر مستحق نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ چیز ملے یا مجھے عطا ہو, بلکہ جو کچھ بھی میں آپ سے طلب کر رہا ہوں مانگ رہا ہوں یہ پیورلی بخشش ہے, پیور بخشش کے طور پہ مانگ رہا ہوں. اور اسی بات کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ یہ خود ایک بہت بڑی تعلیم و تربیت ہے امام علیہ السلام سے, کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خالص بندے بن کر حاضر ہو, اور جو خالص عبد ہوتا ہے وہ اس کے یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ عبد جو ہے وہ معبود کی بارگاہ میں اس طریقے سے جاتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے یہ کیا ہو یا وہ کیا ہے, کیونکہ عبد جو ہے وہ از اول تا آخر جو بھی ہے وہ معبود کا فیض اور اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات, کہ آپ لوگ اس بات کو भी अपने जहन में अच्छे तरीके से उजागर कर लें कि ये जब बंदे की हैसियत से रब की या माबूद की बारगाह में जाया जाता है तो ये सोच के नहीं जाया जाता कि मैंने इतनी इबादतें की हैं, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने इतनी दुआएं की हैं, मैं इतनी नमाजें शब में खड़ा हूं। नथिंग। इस किस्म की कोई चीज बंदे के पेशे नजर नहीं होती है। और वो क्या होता है? वो रब और माबूद की बारगाह में फकीर महज होता है। ठीक। इसलिए ये जुमला इमाम अलैहिस्सलाम ने बार 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 आप देखें, वहबली हबली, मुझे बख्श दे, मुझे अता कर दे, मुझे, यानी कि अपने फकत और फकत इस अब्द व माबूद की रिश्तेदारी की बिना पर मुझे अता कर दे। क्या अता कर दे? अल आफियत मिन दैन, कर्ज से आफियत अता कर दे। ठीक। यानी सबसे पहली बात क्या है, यहां भी देखें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिंदगी में ये कोई उम्दा तरीका नहीं है कि इंसान पहले प्रॉब्लम्स को इनवाइट करे, इंसान पहले जिंदगी में मसाइल को खड़ा करे और फिर उसके बाद उनके हल के लिए भाग दौड़ करे और फिर अगर हल कर ले तो खुश हो के मैंने एक प्रॉब्लम को हल कर लिया। बल्कि ज्यादा बेहतर तरीका क्या है कि इंसान अपनी जिंदगी में मसाइले गुनागों से आफियत में रहे। और इसका मकसद क्या है? इस तमन्ना का कि मैं मसाइल में ना उलझूं, मुझे कर्ज से आफियत में रख, आफियत बख्श दे, अता कर दे। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में और खास तौर से दुनियावी जिंदगी में आप जितने भी मसाइल में गिरफ्तार होते हैं और एक आम इंसान और एक मुसलमान की हैसियत से जब हम उन मसाइल का मुकाबला करते हैं तो इनएविटेबली हमारी आखिरत का टाइम लॉस्ट होता है। यानी वो एफर्ट और वो टाइम जो हम अपने आखिरत में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो जाया होती है। यानी हम उस जगह पे नहीं है, ये बात बिल्कुल हमको माननी चाहिए। क्योंकि देखें, जब भी आप तरबियत की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो जब तक मैं और आप अपने साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं होंगे उस वक्त तक तो बेकार है फिर सारी बात करना ना। यानी अपने आप को धोखा देने का कोई फायदा नहीं है। जो सच्ची बात है वो ये है कि हम इस मेयार पर नहीं हैं कि हम अपनी दुनिया को आखिरत में कन्वर्ट कर सकें। हर जगह पे हम इस जगह पे नहीं है। यानी दुनिया को आखिरत में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे नबी हैं, इमाम हैं, उनके लिए दुनिया में जितने भी मसाइल दरपेश होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का हर कदम कुर्बतन इलल्लाह होता है, तो इस बिना पर उनके लिए दुनिया की जिंदगी की कोई प्रॉब्लम भी दुनियावी नहीं होती, बल्कि वो भी आखिरत का हिस्सा बन जाती है। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स आई वो सब का सब उनकी आखिरत की राह के मामलात थे। ये नहीं था कि फकत दुनिया के जिंदगी के लिए वो तमाम चीजें हो रही थी। ऐसे ही अंबिया, आइम्मा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बनू मैया से जो मुश्किलात हुई, इमाम हसन, इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या खाली वो सब दुनियावी मामलात थे? क्या वो खाली दुनियावी टसल थी? नहीं, वो तमाम के तमाम मामलात उनके आखिरत के मामलात थे। हम ऐसे इस जगह पे नहीं। तो हमारे लिए जो बात बहुत बेहतर है, जिसकी हमें खुदा से तलब और तमन्ना करनी चाहिए, वो ये है कि या अल्लाह, मुझे दुनिया में ऐसे मसाइल ना दरपेश हों, ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे सामने ना आए कि जो मुझे अपने आप में इतना मशगूल कर लें कि मैं उसमें फंसकर अपनी आखिरत के लिए काम करने से रह जाऊं और उससे महरूम हो जाऊं। ठीक है। तो पहली मंजिल पर इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे कि मेरा कर्ज अदा कर दे, ये कह रहे हैं कि मुझे कर्ज से आफियत में रख। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। ठीक है, कर्ज से आफियत में रख। तो खुलको बही वजही, अब उसको बयान फरमाते हैं कि अगर जो बात हमारे समझ में आ जाएगी कि कर्ज में फंसना, कर्ज के अंदर या नौजुबिल्ला कर्ज की जंजीरों में जकड़ जाना इंसान को क्या करता है। तुखलिकु बिही वजही, मेरी वज को खराब, मेरे वज, वज का जाहिरी मतलब होता है चेहरा, मेरे चेहरे को खराब कर देता है, मेरे चेहरे की इज्जत को खत्म कर देता है यह कर्जा। वह यहार फी है जहनी, मेरे जहन को परागंदा कर देता है, मुंतशिर कर देता है। वह यतशअब लहू फिक्री, और मेरी फिक्र जो है वो मुनशअब हो जाती है, यानी शोबों में बढ़ जाती है, मेरी फिक्र फोकस्ड नहीं रह पाती, मेरी फिक्र जो है वो अपनी जिंदगी में डिस्पर्स्ड हो जाती है, अलग अलग शोबों में बढ़ जाती है। ये अब आप फरमा रहे हैं कि ये अगर कोई इंसान कर्ज में फंस जाए तो उसे है कि या अल्लाह मुझे दुनिया में ऐसे मसाइल ना दरपेश हों, ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे सामने ना आएं कि जो मुझे अपने आप में इतना मशगूल कर लें कि मैं उसमें फंसकर अपनी आखिरत के लिए काम करने से रह जाऊं और उससे महरूम हो जाऊं। ठीक है, तो पहली मंजिल पर इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे कि मेरा कर्ज अदा कर दे, ये कह रहे हैं कि मुझे कर्ज से आफियत में रख। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। ठीक है, कर्ज से आफियत में रख। तुखलिकु बिही वजही, अब उसको बयान फरमाते हैं कि अगर जो बात हमारे समझ में आ जाएगी कि कर्ज में फंसना, कर्ज के अंदर या नौजुबिल्ला कर्ज की जंजीरों में जकड़ जाना इंसान को क्या करता है। तुखलिकु बिही वजही, मेरी वज को खराब, मेरे वज, वज का जाहिरी मतलब होता है चेहरा, मेरे चेहरे को खराब कर देता है, मेरे चेहरे की इज्जत को खत्म कर देता है यह कर्जा। वह यहार फी है जहनी, मेरे जहन को परागंदा कर देता है, मुंतशिर कर देता है। वह यतशअब लहू फिक्री, और मेरी फिक्र जो है वो मुनशअब हो जाती है, यानी शोबों में बढ़ जाती है, मेरी फिक्र फोकस्ड नहीं रह पाती, मेरी फिक्र जो है वो अपनी जिंदगी में डिस्पर्स्ड हो जाती है, अलग अलग शोबों में बढ़ जाती है। ये अब आप फरमा रहे हैं कि ये अगर कोई इंसान कर्ज में फंस जाए तो उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले अपने चेहरे की, अपनी शक्ल की इज्जत जाती है, जहन का सुकून रुखसत होता है, फिक्र फोकस्ड नहीं हो पाती, एक नुक्ते पे मरकूज नहीं हो पाती। और ये बात आप अच्छे तरीके से हम सबको पता है कि अगर फिक्र मरकूज नहीं हो पाती, आप एक नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ सकेंगे। अगर फिक्र परागंदा और मुंतशिर है और कर्ज के मामलात या रिज़्क रोजी के मामलात बंदे को इधर उधर से खींच रहे, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, एक नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ पाएगा इंसान, एक आयत की तिलावत गौर के साथ, गौर फिक्र के साथ नहीं कर पाएगा। तो अब ये नुकसान आते हैं, यानी कि अब जो मारिफत है इमाम अलैहिस्सलाम की दुआओं में वो हमको ये बता रही है कि देखो। और यही जो एक जुमला मैं बार बार अर्ज करता हूं ना, जब हमने सवाल और दुआ का फर्क आपको समझाया था तो उसमें ये जुमला भी बार बार दोहराते रहने की जरूरत है कि जो हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम से सीखना है कि आप किस तरीके से अपने सवाल को दुआ में कन्वर्ट करते हैं। यानी हम जिंदगी में मजबूर मोहताज हैं और इस मजबूरी और मोहताजी की बिना पर सवाली हैं, लेकिन मोमिन का हुनर क्या है? मोमिन का हुनर यह है कि वो फकत सवाली नहीं रहता, मोमिन की स्किल यह होती है कि वो अपने सवाल को दुआ यानी तकर्रुब इलाही में कन्वर्ट कर देता है, उस जगह तक ले जाता है। तो अब जब कर्ज पर के हवाले से बात हो रही है, मकरूज होने के हवाले से बात हो रही है, तो अब आप देखें कि यहां पर किस किस्म का तर्ज फिक्र हमारे सामने आ रहा है। पहला ये कि اے خدا, جب یعنی خدا سے مانگیں گے تو ہم یہ نہیں مانگیں گے کہ قرض ادا کر, بلکہ یہ دعا مسلسل کرنی ہے کہ قرض سے عافیت میں رکھ, قرض سے اپنی حفاظت میں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ قرض سے یہ سارے کے سارے نتائج برآمد ہوتے ہیں. وَيَطُولُ بِمُمَارَسَتِهِ شُغْلِي, اور کیا ہوتا ہے کہ میرے جو مشغولیات ہیں اس قرض کی ادائیگی یا اس سے جان چھڑانے کے لیے, وہ طول کھینچ جاتی ہیں, انہیں میں اسی میں ہی میرے پرولونگ ہو جاتی ہیں, لینتھن ہو جاتی ہیں میری ایکٹیویٹیز انہی مشغولیات کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس مصیبت سے اپنے آپ کو نجات دلاؤں. اور یہ چیز بہت زیادہ یعنی کہ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں اقض عنی دینی, یہ جو دعا ہے نا امام زمان علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں بھی ہے, اقض عنی دینی یعنی میرے قرض کو مجھ سے ادا کر دے, ختم کر دے, قرض ختم کر دے, قضا فنش. اس نام کی کوئی چیز جو ہے نا میری زندگی میں اور میرے معاش میں موجود نہ رہے, کیونکہ یہ تمام کے تمام مسائل اور مشکلات ہیں. اور اسی بنا پر آئمہ علیہ السلام کا جو سیرت و سنت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات دکھتی ہے اور نظر آتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے آگے کہتا تھا نا کہ میں مقروض ہوں اور خاص طور سے قرض خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں, تو آئمہ علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اس بندے کی مدد کرتے تھے. اور میں نے آپ کو شاید یاد ہو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام مسجد الحرام میں حالت اعتکاف میں تھے اور ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یبن رسول اللہ میں مقروض ہوں, بہت پریشانی میں ہوں, اور آپ نے اس نے جب وہ رقم بتائی تو آپ نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کعبے کے رب کی قسم میرے پاس یہ اتنی رقم نہیں ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جو بندہ میرے پیچھے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے اور اب مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے, اگر آپ اس سے چل کر میری سفارش کر دیں کہ مجھے کچھ اور وقت دے دے تو وہ آپ کی بات مان لے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایک عزت و حرمت ہے. امام علیہ السلام فوراً اٹھے ہو چلے گئے, اس کے ساتھ اعتکاف میں سے نکل گئے اور مسجد الحرام کے, اور پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو شاید عبداللہ ابن عباس یا ایسے کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے اعتکاف خراب کر دیا, تو آپ نے بتایا ان سے کہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے بندہ مومن کی ایسی برننگ پرابلم کو سالو کرتا ہے جیسے قرض اور اس قسم کے مسائل, تو یہ کتنے کتنے حج اور عمرے کے ثواب سے بالاتر ہے اس کام کا انجام دینا. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت بھی ہمارے یہاں موجود ہے شاید چھٹے یا ساتویں امام سے, کہ قیامت میں جب ایک مسلمان ایک مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اپنے پاس ایک بڑی حسین صورت کو دیکھے گا, حسین صورت کہہ لیں انسانی شکل, وہ اس کا استقبال کرے گی, اس کے ساتھ ساتھ چلے گی, اور یہاں تک کہ اسے جنت میں ہر مشکل مرحلے پر اس کو ہیلپ کرے گی وہ جو بھی اس کا ہمزاد کہہ لیں خوبصورت, اور یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخلہ دلوا دے, اور پھر وہ اس سے پوچھے تم کون ہو, تم نے میری اتنی مدد کی اور تمہارا یہ حسن و جمال ہے, تو وہ کہے گا, وہ حسین صورت یہ کہے گی کہ میں وہ سرور ہوں, یہ بڑا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے, میں وہ سرور ہوں یعنی خوشی ہوں لذت ہوں جسے تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے برادر مومن کے قلب میں داخل کیا تھا, میں وہ سرور ہوں کہ جو قیامت میں قبر سے اٹھنے سے لے کر اور جنت میں داخلے تک کسی بھی موقع پر ساتھ نہیں چھوڑتی, اور یہاں تک کہ بندہ مومن کو جنت میں داخل کرا کر دم لیتی ہے. तो इस बात को जहन में रखिएगा. और जैसे कि हमें इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ से ये बात पता चल रही है कि कर्ज के अंदर जो मुसलमान या मोमिन फंस जाता है, खुदा हम सबको महफूज रखे, उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं बहुत. जो चार प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे जिक्र फरमाई और अभी और भी आगे आ रही हैं, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना किस कदर सुरूर का बायस होगा उस बंदे मुस्लिम या मोमिन के कल्ब के वास्ते. फिर आप फरमाते हैं, वऊज़ु बिका या रब्बी मिन हम्मिद्दैन व फिक्रही, वऊज़ु बिका, और मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ, तुझसे पनाह तलब करता हूँ ऐ मेरे रब. मिन हम्मिद्दैन, हम यानी उसके एक ऐसी चीज जो इंसान को अफसुर्दा कर दे, गमगीन कर दे. हम्मिद्दैन के कर्ज के अफसुर्दगी और परेशानी, व फिक्र ही, और उसकी फिक्र में मशगूल रहने से, क्योंकि ये चीज इंसान को चैन और सुकून नहीं लेने देती. व शोलिद्दैन व सहारे ही, और कर्जे की मशगूलियत से और इसके नतीजे में लॉस ऑफ स्लीप से, इसके नतीजे में बेदार रहने से. फसल अला मुहम्मदिन व आलिही व अइज़नी मिन्हु, के दुरूद फरमा मुहम्मद व आल मुहम्मद पर, व अइज़नी मिन्हु, और मुझे इससे अपनी पनाह में रख, अपनी पनाह में रख. وَأَسْتَجِيرُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ فِي الْحَيَاةِ وَمِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَاتِ. اب یہ جو جملہ ہے یہ خاص طور سے ان انسانوں کے لیے ہے کہ جو قرض کے طلبگار ہوتے ہیں, یعنی قرض خواہ ہوتے ہیں. قرض خواہ تو نہیں, یعنی کہ جو مقروض ہو جاتے ہیں, उनके लिए जुमला खास तौर से बायस तवज्जो है कि यह बहुत शदीद डिस्करेजमेंट है कर्ज मांगने के हवाले से, कर्ज लेने के हवाले से यह बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग जुमला है. व अस्तजीरो बेका, मैं तेरी पनाह चाहता हूं. इस्तजारा इजारा, अजीर जो है, यानी जैसे आप कहते हैं ना कि तेरे कुर्ब, तेरा पड़ोस, तेरी पनाह, क्योंकि जिसकी भी पनाह में हम आते हैं तो जाहिर है कि उसका कुर्ब और उसका पड़ोस मिलेगा तो उसकी पनाह में आएंगे, या उसकी हिमायत नसीब होगी तो उसकी पनाह में आएंगे. और अस्तजीरो यानि मैं तेरी पनाह और तेरा कुर्ब, तेरा पड़ोस तलाश करता हूँ ऐ मेरे रब. किससे? मिन जिल्लते ही, इस कर्ज की जिल्लत से. फिल हयाती, अपनी दुनिया की जिंदगी में. यानी कर्ज अगर इंसान के ऊपर बाकी रहे, कर्ज का बोझ इंसान के सर पर और कंधों पर रहे, तो ये जिंदगानी दुनिया में बाएसे जिल्लत है. और यहां पर आप इस बात को एक्सटेंड कर सकते हैं इस जुमले को, कि ये सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं है, ये खानदान के लिए भी है, एक ग्रोह के लिए भी है, और एक पूरी कौम के लिए भी है. कि ये जो जिल्लत ही फिल हयात है, ये एक ऐसा उसूल है मकरूज होने की बिना पर जो अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होता है, यानी कि जिसका आज हम बिल्कुल अपनी नजरों के सामने देखते हैं अपनी कौम का हाल, कि जहां पर शुरू से ही इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों से मांग तांग के कोई मेरा ये मसला हल कर दे. कितने अफसोस की बात होती है हमारे यहाँ कि जलजला आया तो हमारे ऊपर से नीचे तक इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की तलब कर रहे हैं, सैलाब हर साल आता है तो उसमें इंटरनेशनल एड के तलबगार बन के बैठे हुए होते हैं. यानी कि हमारे पास ये फिक्र ही नहीं आती कि हम अपने आप को इस लिहाज से खुद कफील बनाएं और अपनी खुददारी को मजबूत करें कि किसी से कुछ मदद लेने की जरूरत ना पड़े, जो कि हमें अक्सर औकात गैर मुस्लिम अकवाम में ये चीजें नजर आती हैं कि उनके यहाँ जब ये कुदरती आफात आती हैं तो वो मैक्सिमम लेवल पर अपने ही वसाइल पर भरोसा करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ना कि दूसरों की इमदाद पर. तो कर्ज क्या है? ये दुनिया की जिंदगी में जिल्लत लेकर आता है, कि ये कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। यानी जैसे अभी मैंने कहा कि जो मोमिनीन है, अगर वो इस बात पर आमादा हैं कि हम, अगर कोई हमारा मोमिन भाई है उसकी प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हर वक्त कर्जे मांगता फिरे, या हर वक्त लोगों से इमदाद लेता फिरे, या हर वक्त जहां पर भी हमारे सामने कोई मुश्किल परेशानी आए और हम फौरन लोगों के पास पहुंच जाएं कि मेरी ये मदद करें या मेरे ये मसले को हल करें। नहीं, ये रवैया क्या है, इन्हें हाथ नीचे रखना, ये जिल्लत है हयात दुनिया में। कि हर मुसलमान और हर मोमिन को यह कोशिश करना चाहिए कि उसका हाथ हमेशा ऊपर रहे, यानी देने वाला बने, अता करने वाला बने, ना के मांगने वाला। तो जिल्लत ही फिल हयात। और अगला जुमला जो है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, वत मिन तबेअते ही बादल वफात। और जो कर्ज की जिल्लत है और उससे रिलेटेड इल इफेक्ट्स हैं, ये मरने के बाद खत्म नहीं होते, ये कंटिन्यू करते हैं वफात के बाद भी, ये और ज्यादा खतरनाक। और जिसमें एक बात तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम उसके अंदर बाकी चीजों को ना जान सकें, एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इंसान के नफ्स में से जब इज्जत नफ्स और खुददारी वाली हालत निकल जाती है, तो क्योंकि आखिरत और कब्र का सारा हिसाब किताब सिफात नफ्स पर है, तो अगर इस हाथ नीचा रखने और मांगने और दूसरों से उम्मीदवार रहने की बिना पर इंसान के नफ्स में जिल्लत और ख्वारी वाली सिफत पैदा हो चुकी है, तो ये वफात के बाद भी एक मुसीबत बन के गले में चिमटी हुई है। तो मैं तुझसे इस बात की पनाह मांगता हूं, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं कि इस कर्ज की जिल्लत जो जिंदगी में हो उससे मुझे बचा ले, और इसके ही रिलेटेड जो इसको फॉलो करते हुए जितने इल इफेक्ट्स और खराबियां जो मरने के बाद जान के साथ चिमटी रहती हैं, उनसे मुझे अपनी पनाह में रख। तो अब यानी कि इसमें जो बहुत ही अजीब बात जो अब तक हमको नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अब तक ऐसी कोई बात की ही नहीं है कि मेरा कर्जा अदा करा दे। और ये जो पहलू है ना मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं में, यही हमारे लिए मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं कि जो मकतबे इस्लाम है, मकतबे इस्लाम खराबियों को जड़ से उखाड़ने का नाम है, ना कि इस बात का नाम कि आप पहले खराबियों को पूरा पूरा पनपने और ग्रो करने का मौका दें और जब वो अच्छा खासा तनावर दरख्त बन जाए तो फिर उसके पीछे आरे और कुल्हाड़े लेके दौड़ते फिरें कि इस दरख्त को कैसे काटा जाए, जो कि अभी मॉडर्न वेस्टर्न या दीगर सोसाइटीज का यही हाल है। और इवन अभी भी जब वो मसाइल को देखते हैं, चाहे वो इनफरादी हो इज्तमाही हो, तो भी जड़ पे नहीं जाते, तब भी खाली उसकी शाखों को काटने छाटने की फिक्र में लगे रहते हैं। तो अब आप यहां पे गौर कर रहे हैं कि एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को कहां से आना है, उसको ग्रो ही नहीं होने देना, उसको जड़ से ही निकाल के फेंक देना है, खत्म कर देना है। अभी तक ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई है कि मैं मकरूज हूं, मेरा कर्जा अदा कर दें, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। फिर फसल अला मुहम्मदिन व आलिही व अजरनी मिन्हु, और मुझे उससे, अजरनी का मतलब है कि मुझे उससे अलग कर ले, भाई अजर आजर अजीर, यानी कि मुझे डिलीवर मी फ्रॉम इट, मुझे इससे निजात दिला दे, मुझे इससे अलग कर दे, मुझे इससे बाहर निकाल दे। बेवुसअन फाज़िलन औ कफ़ाफ़न वासिलन, किस तरीके से मुझे इससे निजात दिला दे कि तेरा फजल, तेरे फजल की वसअत मुझे नसीब हो जाए, या ऐसी चीज से मैं मिल जाऊं जो मेरी जरूरियात की किफायत कर दे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर मैं मुझे कर्जे से बाहर निकालने के लिए तू जो भी रास्ता इख्तियार करे, तो वो रास्ता ऐसा ना हो कि जिसकी बिना पर मैं लोगों का एहसानमंद हो जाऊं, बल्कि अपने फजल की कोई वसत मुझे दे दे और मुझे कोई ऐसा सोर्स दे दे कि जो जहां से मेरी जरूरियात की किफायत हो जाए। यानी अपनी बारगाह से कोई इंतजाम कर कि जहां से मेरी किफायत अच्छे तरीके से हो जाए और जहां से तेरा फजल और उसकी वसअत मुझे अच्छे तरीके से नसीब हो जाए। ठीक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही। और ये फीचर अइमा अलैहिस्सलाम के कलमात का आपको पता ही है कि हर हाजत के जुमले से पहले दुरूद। और दुरूद की हवाले से खास बात क्या है कि दुरूद के लिए जब कहा जाता है कि ये बेहतरीन दुआ है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अपनी हाजतों को दुरूद में मलफूफ करके लपेट कर खुदा की बारगाह में रवाना किया करो। यानी अव्वल और आखिर दुरूद हो। क्यों? इसलिए कि खुदा इस बात से हया करता है कि तुम्हारी तरफ से पेश की हुई चीज को अव्वल और आखिर को कबूल कर ले और दरमियान को रद्द कर दे। खुदा इस बात से हया करता है। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही वहजुबनी अन सर्फी वल इज़दियाद। अब इमाम अलैहिस्सलाम देखें, अब ये कंसेप्ट नंबर 3 है। पहला क्या था? पर्स आफियत। और क्यों आफियत? कि जैसे मैं एक बात अक्सर आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप जब सवाल भी अपना लेके जाए ना खुदा की बारगाह में, तो खुदा की बारगाह में सवाल करने का भी एक ढंग और तरीका होता है। ये नहीं होता कि मुंह उठा के पहुंच गए, ये दे दें, वो दे दें, वो दे दें। तो शायद मतलब ये इतना, जैसे कोई भी वो हो कि अगर कोई भी इंसान इस तरीके से हमसे भी आके बात करे तो हमारा दिल ही जाएगा कि इसको कान से पकड़ के बाहर निकाल दें, कि जिसको बात तक करने की तमीज नहीं है। तो खुदा की बारगाह में अगर सवाल भी करना होता है ना, तो सवाल करने के ये तमाम तरीके हैं। अदब है, तमीज है, तहजीब है। और एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सवाल के अंदर अगर ये अदब हमने सीख लिया तो ये बहुत बहुत काम की बात है। और ये अदब अंबिया अलैहिस्सलाम है कि किसी भी जुमले में अगर कोई ऐसा पहलू निकल रहा है कि जिसमें किसी तरीके से भी कोई खराबी का या कमजोरी का या ऐब व नक्स का पहलू निकलता है, तो उस जुमले को हमेशा डायरेक्ट करते हैं अपनी तरफ। और जितने भी हमारे जुमलों में मदा का, तारीफ का, अजमत का, बुलंदी का जो पहलू होता है, उसको हमेशा डायरेक्ट करते हैं खुदा की तरफ। यानी कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि ऐ मेरे रब, आपने हमको बीमार कर दिया, आपने मुझे तकलीफ में डाल दिया, मैंने आपसे दुआ की थी और मैं आपसे 10 दफा दुआ करके जा चुका हूं और आपने मेरी दुआ। कभी भी ये जुमला नहीं होगा। यानी मैं एक छोटी सी बात, सूरह शुअरा की आयत है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नॉर्मल जुमले हैं, उसमें आप गौर करें, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, इसमें व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीनी। मर्ज, मरीज होने की नस्बत अपनी तरफ दी है, ये अदब है। जबकि हमें पता है कि ये तमाम की तमाम चीजें खुदा की तरफ से हैं, मर्ज भी खुदा की तरफ से है, सेहतयाबी भी खुदा की तरफ से। लेकिन जब बयान फरमा रहे हैं तो कैसे बयान फरमा रहे हैं? वो इज़ा मरिज़्तु, जब मैं मरीज होता हूं, फहुवा यशफीनी, तो वो है जो मुझे शिफा अता करता है। तो इस अदब और इस तमीज के साथ कि ये जो दुआ है नबी और इमाम अलैहिस्सलाम की अलैहिस्सलाम की, तो उसमें से हमें जो चीज सबसे पहले सीखना है ना, वो अदब और तमीज है कि खुदा की बारगाह में बात कैसे की जाती है, खुदा को खिताब कैसे किया जाता है, खुदा की बारगाह में अपना केस कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कि इस बात का सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यानी कि आपने फरमाया कि क्यों मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि मुझे हमेशा आफियत में रखना कर्जे से, इस वजह से ये सारी मुसीबतें जो इंसान पे वारिद हो जाती हैं। उसके बाद अगर मुझे इससे निजात दे, मुझे इससे निजात चाहिए, तो मेरी गुजारिश है कि तेरे फजल और किफायत या तेरे खजाने में से कुछ मिल जाए, लोगों का एहसान मंद और उनके सामने नजर झुकाना, हाथ पैर जोड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अब उसके बाद क्या फरमाते हैं कि अच्छा, और इसका आपने वो वाला मारिफत का पहलू भी बयान फरमा दिया कि अगर किसी इंसान खुदा ना खास्ता कोई कर्ज मांगने की आदत अपना लेता है तो उसे फिर इस बात से खबरदार रहना चाहिए कि ये चीज दुनिया में जिल्लत और वफात के बाद बहुत सारे मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं, जिसमें से एक बड़ी मुसीबत का मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि जिल्लत नफ्स और ख्वारी जो है नफ्स की, वो इंसान के अंदर अपनी जगह बना लेती है। फिर आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि, अब ये चौथा पहलू है कर्ज के हवाले से, वाहजुबनी अन सर्फ वल इज़्दियाद, वाहजुबनी मुझे अपने हिजाब में रख या मुझे अपने पास से हिजाब और पर्दा अता कर दे, किससे पर्दा अता कर दे, अपने पर्दे में छुपा ले, अन सर्फ वल इज़्दियाद कि मैं इस बात में मुबतला ना हूं कि इसराफ करूं जिंदगी में, एक्स्ट्रावेगेंट हूं, स्पेंडथ्रिफ्ट हूं, वसाइल को बर्बाद करने वाला हूं, इसराफ करने वाला हूं, वल इज़्दियाद, और ये कि यानी एक इंसान वो होता है ना कि जो ज्यादा के चक्कर में रहता है, ना इसराफ करने वाला बनूं ना ज्यादा ढूंढने वाला बनूं, जिंदगी में यानी वही जो कनात आए, जो कुछ मिले वो अपनी जरूरत पूरी हो, इंसान सुकून से रहे। आपको अगर अपनी एम्बिशंस पूरी करना है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना है, तो आखिरत में पूरी कीजिए, बहुत है वहां पे। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर अपनी दो तीन एम्बिशंस बना लेना, एक एम्बिशन ये हो कि अपनी हर नमाज तवज्जो से अदा करूंगा, दिन में 5 आयतें जो हैं कुरान करीम की परफेक्ट गौर व फिक्र के साथ तिलावत करूंगा, आप देखें यही एम्बिशन ही नहीं पूरी हो पाएगी हमसे। तो आखिरत के हवाले से एम्बिशन की लिस्ट बहुत वसी है, ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई एम्बिशन वगैरह जगह नहीं रखती हैं। तो अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं, अपनी तमन्नाएं हैं, वो उधर लगाइए। दुनिया के हवाले से इसराफ और ज्यादा और इन सब चीजों में मुझे अपने पर्दे में छुपा ले, वाहजुबनी मुझे अपने हिजाब में रख ले कि मैं इससे बचूं, वक़विमनी और मुझे क़याम अता कर, मजबूती दे, बिलबज़ले वल इक्तिसाद। इंसान, अब आप इस चीज को देखें कि किस तरीके से, बहुत बहुत ही अजीब है ये, बहुत ही अजीब जुमले हैं अगर आप इस पे गौर करें। बजल का मतलब होता है बख्शिश, अता, यानी कि लोगों को देना, बीइंग जनरस, सखावत। और इक्तिसाद का मतलब बुनियादी तौर से, वैसे तो हम कहते हैं ना इक्तिसादी मामलात यानी फाइनेंशियल मैटर्स, लेकिन इक्तिसाद कस जो है ये मियाना रवि को कहते हैं, कस यानी मियाना रवि। इंसान को अपनी जिंदगी में कैसे क़याम और मजबूती हासिल होती है, एक तरफ वो जिंदगी में मियाना रवि इख्तियार करे और उसके साथ साथ बख्शिश और अता वाला इंसान हो। अब आप इस पर सोचते रहेंगे, मामूली जुमला नहीं है ये, बहुत सोचने वाला जुमला है। बहुत डीप थिंकिंग अगेन है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो ये बहुत डीप थिंकिंग का तकाजा करता है कि ये दोनों चीजें कि इंसान अपनी जिंदगी में एक तरफ जेनरस हो और एक तरफ मॉडरेट हो और म्याना रवि का मुजाहरा करे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इंसान को उसकी जिंदगी में क्याम और मजबूती देता है। ठीक है, इसको सोच के थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या जुमला हुआ कि एक तरफ बख्शिश है एक तरफ म्याना रवि है, ये दोनों चीजें जिंदगी में होती हैं तो क्याम हासिल होता है। और फिर आप फरमाते हैं वअल्लिमनी हुस्नत तकदीर, तकदीर का मतलब ये होता है कि कदर जो है वो होता है अंदाजा एस्टिमेशन, यानी वो तमाम की तमाम चीजें जहां पर आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, जहां पर मैनिपुलेशंस होती हैं, एस्टिमेशंस होती हैं। तो हम अपनी जिंदगी में जितने भी मामलात होते हैं वो तमाम के तमाम हम इसी तरीके से हैंडल करते हैं। हमें एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पता होता कि मेरे अगर इवन फाइनेंशियल मैटर्स हैं या दीगर मामलात हैं तो उसमें एग्जैक्टनेस तो किसी के पास भी नहीं है। मुझे नहीं पता है कि अभी मैंने जिस जगह पे काम किया है, कारोबार किया है, मामलात किए हैं, उसमें क्या होने वाला है। लेकिन मुझे क्या अता कर दे, अल्लिमनी, मुझे इल्म अता कर दे कि जो मेरी तकदीरात और मुकद्दरात हैं उसमें सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है। ये इल्म मुझे अता कर दे कि मैं अपनी जिंदगी में जो भी एस्टिमेशंस करूं, कैलकुलेशंस करूं, प्लानिंग करूं, मामलात करूं, वो हुस्न के साथ, बेहतरीन रास्ते और बेहतरीन अंजाम के साथ अपने काम तक पहुंचे। तो अब ये वाला पहलू क्या है, ये जो अब ये सब बातें हो रही हैं, ये कौन से पहलू हैं? ये वो पहलू हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बिल्ड करे कि मकरूज होने की नौबत ना आए। यानी इस दुआ में जो सबसे ज्यादा अजीब बात है ना, वो सबसे ज्यादा अजीब बात है कि सिवाय इस जुमले के कि मेरे कर्जे को अदा कर दें, बाकी सब मौजूद है कर्ज के हवाले से। और यही वो हुनर है, यही वो राह हयात है कि जो हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम से सीखना है कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, यानी इस्लाम हमको किस किस्म की जिंदगी गुजारने पर तरबियत करता है। और फिर क्या, अल्लिमनी हुस्नत तकदीर वक़्बिज़नी बिलुत्फ़िका अनित तबज़ीर, वक़्बिज़नी और मुझे कब्जे में ले ले। वैसे तो कब्ज़ा होल्ड करने को कहते हैं, कब्ज़ा इसको कहते हैं पंजे को, मुट्ठी को, तो ये ना जैसे एक चीज को आपने होल्ड कर लिया तो ये भी कब्ज़ा है। तो वक़्बिज़नी, मुझे होल्ड कर ले, मुझे पकड़ ले, किस बात से, बिलुत्फ़िका, अपने लुत्फ़ से, सख्ती से नहीं। इसमें भी बड़ा बड़ा वो पहलू है जो दुआए अबू हमजा सोमाली के पहले जुमले कि इलाही ला तुअद्दिबनी बिउकूबतिक, कि ऐ मेरे खुदा मैं तेरे पास आया हूं अदब सीखने के लिए, लेकिन एक अदब बाज नालायक जो तालिब इल्म होते हैं तो उन्हें डंडे से अदब सिखाना पड़ता है। मैं उन शागिर्दों में से ना हूं, मैं उन तालिबों में से ना हूं। ला तो अदबनी बेअुकूबतिक, यानी अकाब सख्ती उसके जरिए से मुझे अदब ना सिखा, लुत्फ के जरिए से, मेहरबानी के साथ मुझे अदब सिखा। तो वक़्बिज़नी, मुझे होल्ड कर ले, रोक ले, लेकिन सख्ती से नहीं, जकड़ के नहीं, बिलुत्फ का, अपने लुत्फ से। किस बात से मुझे होल्ड कर ले, रोक ले, आने तबजीर। अगर आपको याद हो पिछली दफा हमने कुरान करीम की आयतों से आपको ये बात बताई थी, सूरह बनी इसराइल के पहले मैंने कुरान की तीन आयतें पढ़ी थी रिज्क की गुफ्तगू करने से पहले, कि जिसमें मैंने ये बताया था कि कुरान करीम खुद हमें अखलाकी मईशत की तालीम कैसे देता है। तो उसमें ये बात थी कि वला तुबज़िर तबज़ीरा, यानी पैसे वसाइल बर्बाद करने वाले, उड़ाने वाले ना बनो। اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, کیونکہ بے شک مبذرین جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تبذیر والا اسپیکٹ ہے نا زندگی میں, وسائل برباد کرنے والا, اس پہ تو مجھے جانے ہی نہیں دینا, وقت بزنی پکڑ کے رکھنا مجھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ التجا ہے کہ اپنے لطف کے ساتھ, سختی کے ساتھ نہیں. ٹھیک, وقبضنی بلطف کا عن التبذیر, یہ اس طرف تو قدم ہی نہیں رکھنا ہے, وسائل اڑانے والے اور برباد کرنے والے اور ریسورسز کو ویسٹ کرنے والے, اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے. واجر من اسباب الحلال ارزاقی, اور جتنے بھی حلال اسباب ہیں ان کے ذریعے سے میرے رزق کو جاری فرما. وَوَجَّهْ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ اِنفَاقِ, اور جیسے کہ ابھی پیچھے امام علیہ السلام نے بذل کا ذکر فرمایا, یعنی سخاوت, اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی انتہائی ضروری بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے, ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف سوشل لائف, کہ جتنے بھی نیکی کے دروازے ہیں, ابواب البر, جتنے بھی نیکی کے دروازے ہیں, میرے انفاق کا رخ ان کی طرف کر دے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جب خدا ہمیں حلال اسباب کے ذریعے سے رزق عطا فرمائے تو اس کے نتیجے میں لازمی اور ضروری ہے کہ ہم نیکی کی راہوں میں اس رزق کو انفاق بھی کریں. یعنی اس رزق کو ہولڈ بیک کر کے نہیں رکھنا ہے, یہ انفاق زندگی کا لازمی جزو ہے. لیکن کس طرف؟ ابواب البر, یعنی وہ دروازے جو نیکی کے ہیں, وہ دروازے جو خیر کے ہیں, میرے انفاق کا رخ ان کی طرف کر دے کہ ان دروازوں سے وہ آؤٹ لیٹ ہوں میرے مال کے انفاق کے لیے اور خرچ ہونے کے لیے. وَزْوِ عَنِّي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْدِثُ لِي مَخِيلَةً, اور میرے مال میں سے وہ لے جا, مجھے نہیں چاہیے ایسا مال. کیسا مال نہیں چاہیے؟ جو مجھے اس خیال میں مبتلا کر دے کہ میں اس مال کی بنا پر بڑا باعزت ہو گیا ہوں, وہ والا مال مجھے دینا ہی نہیں. میرے رزق میں اور میرے اسباب میں, یعنی میرے پوزیشن میں وہ والا مال ہی نہ آئے کہ جس کے بنا پر میں اس خیال میں مبتلا ہو جاؤں کہ I am big shot, او تعدین الی بغی, یا وہ مال کہ جو بغاوت پر اکسانے لگے, اس طرف آمادہ کرنے لگے. او ما اتعقب منه طغیانا, اور وہ مال کہ جس کے عقب میں طغیانی اور سرکشی آ جائے, وہ مال مجھے دینا ہی نہیں, ایسا مال میرے رزق میں یا میرے پوزیشن میں آئے ہی نہیں. اور پھر کیا ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے کس میں ہو رہی ہے؟ قرض میں ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اصل بات انسان کی زندگی میں کیا ہے, جو سیکھنا ہے, جس کی تمیز حاصل کرنا ہے, جس مقام کو حاصل کرنا ہے, کہ ہمیں اپنے مالی معاشی تمام کے تمام معاملات کو ایک جسے کہتے ہیں اخلاق الہی کے سانچے میں ڈالنا ہے. تو اور یہی اسلام کی اصل تعلیمات کا اصل نچوڑ یہی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل جو ہے نا وہ اخلاق الہی و قرآنی اور راہ خدا میں. اگر تم اس راہ پر ہو اور ان اخلاق و کردار کو تم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہو تو then there are no problems existing for you, کہ مسائل زندگی میں اسی وقت کریپ ان کرتے ہیں کہ جب ہم اس رستے کو چھوڑتے ہیں, جب ہم ان راہوں سے اپنے قدم کو ہٹاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو حماقت کے اوپر حماقت ہے, जिसमें शयातीन हमको मुब्तला कर देते हैं, कि फिर हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि इन मसाइल का हल जो है ना ये दुनिया से आएगा या दुनियावी असबाब से आएगा। हमने खुदाई राहों को तर्क किया और हमारी दुनिया और आखिरत खराब हो गई। और जब खास तौर से आखिरत की फिक्र तो वैसे ही हम नहीं करते, हमें ज्यादा प्रॉब्लम उसी वक्त होती है जब दुनिया खराब हो जाती है। और दुनिया के खराब होने के बाद हमने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि दुनिया की खराबी का हल दुनिया में भाग दौड़ के आएगा, ना कि हम इस बात की फिक्र करें कि जो पीछे हम अपने अखलाक और किरदार और ताल्लुक ब खुदा में से खराब करके आए हैं उसको दुरुस्त करें। और उसका नतीजा क्या होता है कि फिर ये एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है कि जो रफ्तार 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 करके पूरी मतलब तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। अब आप इस बात को भी देखें कि पांचवा पहलू इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैया सुहबतल फुकरा, ए मेरे खुदा मुझे फुकरा की यानी गरीबों की मस्तमंदान की मोहताजों की सोहबत को मेरे लिए महबूब करार दे दे, मेरे पास उस माल को आने ही ना दे जो मुझे तुगयानी और बगावत और प्राइड में मुब्तला कर दे। और उसके मुकाबले में अगर मैं मालदार हूं भी तो भी मुझे किसकी सोहबत महबूब रहे, फुकरा की सोहबत महबूब रहे। وَأَعِنِّي عَلَى صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ, और हुस्न सब्र के साथ मेरी मदद फरमा कि मैं उनकी सोहबत पर बाकी रहूं। क्योंकि होगा क्या कि जब भी आप गरीबों के साथ उठे बैठेंगे आप अपने हमजोलियों में बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, ये गरीब जो हैं दुनिया वालों की नजर में गरीब कई किस्म के होते हैं, इस बात को भी जहन में रखिएगा। यानी कि अहले दुनिया की नजर में सिर्फ माल वाले गरीब नहीं होते, बल्कि हर वो इंसान जो उन जैसे काम और हरकतें नहीं कर रहा होता है वो सब उनकी नजर में गरीब और फकीर और मोहताज होते हैं। ठीक है, ये बात भी हम समझ सकते हैं। यानी कि वो क्या है, वो सोशली डिप्राइव्ड पीपल हैं। यानी कि जो हमारे तरीके से पार्टियां नहीं करते, जो हमारे तरीके से तफरीहात नहीं करते, जो हमारे तरीके से लाइफ को एंजॉय नहीं करते, ये बेचारे सारे माजूर गरीब मोहताज। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम बातें भी इसमें आती हैं। ये खाली ये नहीं कि जिसके पास माल नहीं है जो सड़क पर बैठा है वही फकीर है। तो मुझे फुकरा की सोहबत, और सबसे बड़ा फकीर कौन होता है, जो फकीर इलाल्लाह होता है। ठीक है, यानी अहले दुनिया की नजर में वो बिल्कुल फकीर है। कौन, जिसने अपनी आरजुओं को उम्मीदों को दुनिया से हटाकर खुदा पे फोकस कर दिया होता है। जो फकीर इलाल्लाह होता है वो भी इनकी नजर में बहुत बड़ा फकीर है। तो मुझे मदद दे कि मैं सब्र के साथ कायम रहूं। और यह सूरह कहफ की आयत है शायद 18 या 19, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदउन रब्बहुम बिलगदावति वलअशी, वस्बिर नफ्सका, अपने नफ्स पर सब्र करो। यानी नफ्स पर सब्र दिलाओ किस बात से, उन लोगों की मईयत में रहने के लिए अपने नफ्स पर सब्र दिलाओ। यदउन रब्बहुम बिलगदावत वलअशी, कि जो अपने रब को पुकारते रहते हैं सुबह और शाम। वला तअदु ऐनाक अनहुम, इन उनके चक्कर में नहीं जाना उनकी सोहबत में, उन लोगों से अपनी नजरों को ना हटाना। तुरीदु ज़ीनतल हयातद दुनिया, उन लोगों के पीछे उनकी सोहबतों को हमेशा ढूंढते रहना जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं, कि तुम उनसे अपनी नजरों को हटाकर और हयात दुनिया की जीनत के पीछे उसके मुरीद बन के चल पड़ो। तो इस पर, इस काम के करने पर अपने नफ्स को सब्र दिलाना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है, ये सख्त काम है कि अहले दुनिया दुनियादार ये एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट माल तफरी ग्लैमर इन सब को खैरबाद कहकर फुकराए इल्लाह को ढूंढना और उनकी सोहबत को इख्तियार करना। तो मुझे इस पर हुस्न सब्र अता कर। वमा ज़वैत अन्नी मिन मताअ दुनिया फानियत फ़ख़रहु ली फी ख़ज़ाइनिकल बाक़िया। बहुत बहुत खूबसूरत। और ये चौथे इमाम की कई दुआओं में ये जुमले आए कि दुनियाए फानी से जो नेमत या दौलत मुझसे तूने मुझे नहीं दी, कहीं पर है नहीं दी, कहीं पर है जाया हो गई, कहीं पर है मेरे हाथ से निकल गई, उसको रिप्लेस कर दे। यहां पर जुमले क्या है, फ़ख़र हो, उसको जखीरा कर दे मेरे लिए, फी ख़ज़ाइनिकल बाक़िया, अपने बाकी रहने वाले खजानों में। यानी ये इतना विन विन डील है ना मोमिन की खुदा के साथ, इतनी जबरदस्त डील है जो इमाम अलैहि सलाम यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में नेमत खुदा ने तुम्हें दी उसको राह खुदा में खर्च करो और बेहतरीन सरमाया इकट्ठा करो। जो नेमत खुदा ने तुमको नहीं दी उस पर हुस्न सब्र का मुजाहिरा करो। वो जो नहीं मिला तुम्हारे लिए खुदा के हमेशा बाकी रहने वाले खजानों में स्टोर हो जाएगा। वो जो दुनिया में नहीं मिला, और वैसे एक जगह पर आपने फरमाया है कि वो ज्यादा कीमती है मेरे लिए, वो ज्यादा है, यानी कि जो मुझे नहीं मिला मेरा शुक्र उस पर तेरे लिए ज्यादा है बनिस्बत उसके के जो मिला है। क्योंकि अब अगर खुदा ने, यानी जैसे एक बात होती है ना कि मैं फिर वही मिसाल वालिदैन की, हालांकि वालिदैन और खुदा की मोहब्बत का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर वालिदैन मिसाल के तौर पर जब इस बात को देखते हैं कि औलाद की को जब वो देते हैं तो ज्यादा जनरस होते हैं, या औलाद की महरूमी का जब इजाला करने पर आते हैं तो ज्यादा जनरस होते हैं। आप इस बात पे गौर करें, समझ में आ रही है बात। यानी एक तो ये कि वालिदैन औलाद को दे रहे हैं, कुछ अता कर रहे हैं, उस वक्त उनका जोश सखावत ज्यादा होता है। या नऊज़ुबिल्लाह कि औलाद जो है किसी चीज में महरूम है, यानी मिसाल के तौर पर एक औलाद है जो नाबीना है, एक औलाद है जो टांगों से मसला है, तो वालिदैन बाज़ोकात करते हैं ना कि उसके लिए मुझे जमा करना है, उसके आगे उसकी जिंदगी में उसकी हेल्प हो जाए, मैं उसको कारोबार बना दूं या कुछ सरमाया इकट्ठा कर लूं। उनका जो जोश सखावत है वो औलाद की महरूमी का मदावा करने में ज्यादा जोश मारता है, या जब उसको वो दे रहे होते हैं तो ज्यादा जोश मारता है। तो वो इमाम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब खुदा अपने मोमिन बंदे को देखता है कि मैंने जो उसको नहीं दिया उसका मदावा करूं, तो उस वक्त दरियाए रहमत खुदा ज्यादा जोश में आता है, मेरा शुक्र उस पर ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके नतीजे में जो मुझे मिलने वाला है वो उससे कहीं बेहतर है और ज्यादा है कि जो नेमतों में से मुझे मिला है। ठीक है, तो ये यही वो मारिफ है कि जो हमारी हकीकतन दुनिया और आखिरत दोनों को हसीन बना देते हैं, कि अगर इन मारिफ को हमने पिक कर लिया, इनको एब्जॉर्ब कर लिया, इनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए, तो आप फरमा रहे हैं कि जो दुनियाए फानी में से नहीं मिला तूने ले लिया, वो कहां जाए, उसको जखीरा कर ले मेरे लिए अपने हमेशा बाकी रहने वाले खजानों में। वजअल मा खव्वलतनी मिन हुतामहा, और जो भी यहां के टूटी फूटी चीजों में से तूने मुझे नेमतें दी हैं, यानी ये दुनिया जो है ऐसा नहीं कि खुदा ने कोई बुरी चीज बनाई है, लेकिन ये दुनिया वो है कि जो रेजिडेंस नहीं है, कि दुनिया वो जगह नहीं है कि जहां पर खुदा ने हमें रहने के लिए बनाया है। तो जो भी यहां की नेमतों में से मिले, वअज्जल ताली मिन मताअहा, और जो भी यहां की उजलत वाली जिंदगी में से जो भी मता और सरमाया मिले, बुलगतन इला जवारिका। अब ये क्या है, ये सवाल कन्वर्टेड इनटू दुआ, क्योंकि दुआ का मतलब क्या होता है, तकर्रुब, ख्वाहिश तकर्रुब, कि इस दुनिया की नेमतों में से, ये फानी दुनिया है, यहाँ के चीजें ब्रोकन हैं, इनमें वो अजमत नहीं है, इनमें करामत नहीं है, इसमें दवाम नहीं है, लेकिन नेमतें हैं जो खुदा ने जिंदगी में दी हैं, इसको क्या कर दे, ये बुलूग क्या हो इसका, इसका एंड क्या हो, इसकी पहुंच क्या हो, कि ये तमाम की तमाम नेमतें मुझे तेरे जवार, तेरे पड़ोस में पहुंचा दे। सवाल दुआ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कि यानी अब जो नहीं मिला वो बेहतरीन खजानों में जखीरा हो जाए, जो मिला वो जवार खुदा में पहुंचाने का वसीला बन जाए, व वफलतन इला कुर्ब का, और तेरे कुर्ब से विसाल का, व ज़रीअतन इला जन्नतिक। अब यहां भी अगर आप उराफा की नजर से गौर करें ना, तो यहां पर एक बहुत लतीफ नुक्ता है, व ज़रीअतन इला जन्नतिन नहीं है, जन्नतिक है, क्योंकि अहले मारिफत की नजर में ये जो आखिर में काफ लगता है या लगता है ना जन्नत के आगे, ये बहुत कीमती है। जैसे सूरह वल फजर में वद खुली फी इबादी वद खुली जन्नती, तो उसके इमाम खुमैनी ने भी लिखा है, बाकी लोगों ने भी लिखा है, कि ये जो निस्बत आती है ना, जन्नती यानी खुदा कह रहा है मेरी जन्नत, जन्नतिक इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तेरी जन्नत, ये अहले मारिफत की नजर में ये निस्बत बे इंतहा कीमती है, कि ये खाली वो जन्नत नहीं है जो गार्डन है, जो बाग है, बल्कि ये खुदा की जन्नत है, और इसका एक खास नाम है जिसको कहा जाता है बेहिश्ते लिका, कि आखिरत में आला तरीन बेहिश्त वो है कि जहां पर अब्द मुमिन खुदा से हमेशा हालत लिका में रहेगा, वो जन्नत जो है वो बेहिश्त लिका है। तो ये दुनिया में जो ये टूटी फूटी ये तमाम चीजें, ये कहां तक पहुंचा दें, इनका बुलूग क्या हो, तेरा पड़ोस, तेरे विसाल का कुर्ब, और तेरी जन्नत तक पहुंचने का जरिया। अब देखें आप, ये दुआ कौन सी थी, कहां से शुरू हुई थी, पर्ज से शुरू हुई थी, और इस पूरी दुआ, मैंने दुआ खत्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जो अब आखिरी जो दो जुमले हैं वो बस फिर वही खुदा की बारगाह में हम्द है, इन्नक ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम व अंतल जवादुल करीम, दुआ तमाम। इस पूरी दुआ के अंदर आपने देखा कि क्या है दुआ, हकीकतन क्या होती है दुआ, का सलीका, दुआ का ढंग, दुआ की अप्रोच क्या होती है, दुआ इंसान साज है, दुआ मांगने का नाम नहीं है, दुआ जिंदगी की हकीकतों को रोशन करने का, मारिफत हयात अदा करने का, और इस चीज का कि जिंदगी को कैसे गुजारो के अल्टीमेट तकर्रुब इलाही तक पहुंच सको। तो कहां कर्ज और कहां ये सब, यानी हम अगर मांगे कर्ज तो हम क्या मांगेंगे, सोच लें कि अगर कर्ज के अदायगी के हवाले से हम दुआ खुदा से मांग रहे हैं तो क्या मांगेंगे, और उसको कंपेयर करें इमाम अलैहिस्सलाम के इन जुमलात से, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि खुदा के फजल व करम से रफ्ता 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 हम, हमें खुदा जितनी तौफीक इनायत फरमाएगा मासूमीन की दुआओं पर गौर फिक्र करने की, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद है कि हमारी जिंदगी की मारिफत और लियाकत और काबिलियत उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी बिफजल ताला। तो यहाँ पर हम बात आज अपनी ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं खुदा से कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक फिर हम आज़ाद हों ताकि फिर एक अपनी एक अच्छी गैदरिंग में इंशाअल्लाह बात कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम।